मार्गं तावच्छृणु कथयतस्तत्प्रयाणानुरूपम् सन्देशं मे तदनु जलद रोष्यसि श्रोत्रपेयम् खिन्नः खिन्नः शिखिरसुपदम् न्यस्य गन्तासि यत्र क्षीणः क्षीणः परिलघुपयः श्रोत्रसाम् चोपभुज्य अन्वयः हे जलद तावत् कथयतः व्यकरणमत्तः तत्प्रयाणानुरूपम् मार्गम् शृणु तदनु श्रोत्रपेयम् मे सन्देशम् श्रोष्यसि यत्र खिन्नः खिन्नः शिखिरसुपदम् न्यस्य क्षीणः क्षीणः विघटन सन् श्रोतसाम परिलघुपयश्च भुज्य गन्तासि दाख्या हे जलद हे मेघ तावत् इदानीम् कथयतः वदतः मत्त इति शेषः त्वत्प्रयाणानुरूपम् भवत्प्रस्थानानुकूलम् मार्गम् पन्थानम् शृणु आकर्ण्य तदनु तदनन्तरम् मार्गश्रवणानन्तरम् इत्यर्थः श्रोत्रपेयम् कर्णपानारहम् तृष्णातिशयेन श्रावणीयम् इति भावः मे मम सन्देशम् वाचिक श्यामाश्वङ्गम् इत्यादिना वक्ष्यमाणम् श्रोष्यसि आकर्णयिष्यसि यत्र मार्गे खिन्नः खिन्न अभीक्षणम् क्षीणशक्तिस्तन् शिखरिषु पर्वतेषु पदम् चरणम् न्यस्य निक्षिप्य पुनः शक्तिलाभार्थम् क्वचिद् विश्रमेत्यर्थः क्षीणः क्षीणः अभीक्षणम् कृत्शरीरम् तन् श्रोत्साम् गिरिनदीप्रवाहाणाम् परिलघु गुरुत्व दोषरहितम् प्रस्तरास्फलान् खेदितत्वापथ्यम् इति भावः पयश्च जलम् च उपभुज्य उपयुज्य गन्तासि गमिष्यसि सरलार्थ हे मेघ प्रथमम् मत्सकाशात्त्वप्रस्थानानुकूलम् मार्गम् आकर्ण्य तदनन्तरम् साधिशय श्रोत्रसुखोत्पादकम् मदीयम् सन्देशम् श्रोष्यति यस्मिन् मार्गे त्वम् गमनयासेन परिश्रान्तिम् अनुभूय पर्वतेषु पदन्यासे विधायातिकृतो भूत्वा गिरिनदीप्रवाहाणाम् लघु जलम् उपभुज्य गमिष्यसि अनुवाद हे मेघ तुम पहले मुझसे अपनी यात्रा के अनुकूल मार्ग का श्रवण करो तदनंतर अतिशय तृष्णा से सुनने के योग्य मेरे संदेश को सुन लोगे जिस मार्ग में यात्रा के परिश्रम से बहुत ही शक्तिहीन होते हुए पर्वतों में पदन्यास कर अत्यंत दुर्बल होकर स्रोतों के हल्के जल का उपयोग करके जाओगे टिप्पणी जलद जलम ददाती जलदः तत्सम्बन्धौ जल उपपद पूर्वक दाधातु से अतो अनुसर्गे कह इस सूत्र का प्रत्यय हुआ है लेकिन में उपपद समासः कथयता कथ धन लिच धन लट दक्षिण में सत्री धन गस्त यहाँ पर आख्यातोपयोगे इस सूत्र से अपादान संज्ञा होकर कथयत शब्द से पंचमी हुई है त्वत्प्रयाणानुरूपम् प्रधन्या धनल्युट प्रयाणम तव प्रयाणम त्वत्प्रयाणम व्यकरण में षष्ठी तत्पुरुष यहाँ पर उत्तर पद प्रयाण के परे रहते युष्मत शब्द के स्थान में तत्योत्तर पदयोश्च इस सूत्र से त्वत आदेश हुआ है रूपम अनुगतः अनुरूपः यहाँ पर अत्यादय क्रांता द्यर्थे द्वितीयया इस वार्तिक से प्रादि समास हुआ है त्वत्प्रयाणस्य अनुरूपः तम व्यकरण में षष्ठी तत्पुरुष यह मार्गम का विशेषण है त्रुणु त्रु धन लोट धन सिप तदनु अनुलक्षणे इस सूत्र से अनु को कर्म प्रयोजनीय संज्ञा होने से कर्म प्रयोजनीय युक्ते द्वितीया इससे द्वितीया हुई है स्रोत्र पेयम श्रूयते आभ्यामते स्रोत्रे श्रु धातु से औणादिक स्तन प्रत्यय हुआ है पातुम योग्य पेय पानार्थक पा धातु से अचोयत इस सूत्र से यत प्रत्यय होकर इद्यति इससे पा के अकार के स्थान में इकार होकर गुण होकर पेयम रूप बनता है पा धन्यत श्रोत्राभ्याम पेय तम विकट में तृतीया तत्पुरुष यह संदेशम का विशेषण है कहीं कहीं स्रोत्र प्रेम के स्थान पर श्रव्य बंधनम ऐसा पाठ मिलता है उसमें श्रव्यो बंधनो यस्मिन तम ऐसा विग्रह कर बहुवीही समास करना चाहिए श्रोतव्य रचनम अर्थात श्रवणीय रचना वाला ऐसा अर्थ करना चाहिए। संदेशम सम धन जिस धन है श्रोष्यसि त्रु धन लृट धन से यत्र यस्मिन नीति यत शब्द से सप्तम्यास्त्रल इस सूत्र से त्रल प्रत्यय हुआ है यह अव्यय है। किन्ना किन्ना परिघातार्थक खिद धातु से कर्ता के अर्थ में एक प्रत्यय होकर खिन्न शब्द बना है। नित्य विषय इस सूत्र से नित्यार्थ में दिप्त हुआ है। शिखरिषु शिखराणि संतु येषु शिखरिणः तेषु शिखर धन इनि महिद्रे शिखरिष्मा भृदहार्य धर पर्वताः इत्यमरः। न्यस्य नि धन अस धन इक्त्वा जकट में लप चीणः चीणः छियार्थक छी धातु से कर्ता में एकता प्रत्यय होकर छियो दीर्घात इस सूत्र से दीर्घ होकर चीणः शब्द सिद्ध होता है। यहाँ पर पूर्ववत नित्यार्थ में दीर्घक्ति है। परिलघु परितः लघु यहाँ पर कुगत प्रादेह इस सूत्र से गति समास हुआ है। पत्थरों से ताड़ित होने के कारण पर्वत की नदियों का जल हल्का और पथ्य होता है ऐसा वाग्भट ने प्रतिपादन किया है। उपभुज्य उपधन भुज धन इक्त्वा विकट में लप गंतासि गम धन लुट धन सिप इस श्लोक में उत्तराद में कार्य से मेघ में सामान्य पथिक के व्यवहार का समारोप होने से समासोक्ति अलंकार है। अद्रे श्रृंगम हरति पवन किंतुदित्युन्मुखीभिर् दृष्टोत्साहश्चकित चकितम् मुग्ध सिद्धांगनाभिः स्थानादस्मात् सरिसिनिचुलादुत्पतोदङ्मुखः खम् दिङ्नागानां पथिपरिहनस्थूलहस्तावलेपान्। अन्वयः पौनः अद्रे श्रृङ्गं हरति किञ्चित् इति उन्मुखीभिः मुग्ध सिद्धांगनाभिः चकित चकितम् दिष्टोत्साह जकट में सन तरस निचुलात अस्मात स्थानात पथि दिंग नागा नाम स्थूल हस्ताव लेपान परिहरन उदंग मुख जकट में सन खम उत्पत व्याख्या जकट में हे मेघ पवन वायु अद्रे पर्वतस्य राम गिरे रीति भाव श्रृंग शिखरम हरति किंचित नयति किम इति इत्तम संकेति शेषः उन्मुखी भी उन्नत वदना भी मुग्ध सिद्धांगना भी मूढ़ सिद्ध सुंदरी भी चकित चकितम साश्चर्यम यथास्यात् तथा दृष्टोत्साह विलोकितोद्योगः विकट में सन तरस निचुलात आर्द्रस्थल वेत सात अस्मात् एतस्मात् आश्रमात् पथि मार्गे आकाश मार्गम इति भावः दिंगनागानाम दिग्गजानाम स्थूल हस्तावलेपान पीवर सुंडाक्षेपान परिहरन परित्यजन उदंग मुख उत्तराभिमुख सन अलकाया उत्तरादिग्भवत्वादित्याभिप्रायः खम आकाशम उत्पत उद्गच्छ सरलार्थ हे मेघ वेगातिशयन गच्छतस्तद्वोद्योगम वीक्ष वातः पर्वत शिखरम हरति किम इति विचिन्त्य मूढ़ा सिद्ध सुंदरियोति चकिताः भविष्यन्ति ततः आर्द्रस्थल वेत सादस्माद्दाश्रमान् भूमार्गे प्रतिरोधकानां दिग्गजानां पीवर सुंडा दंडक्रमणानि परित्यज नल कागमनार्थ मुत्राभिमुखत्वेन गगनम उत्पत्त अनुवादः हे मेघ तुम्हारा उत्साह देखकर सिद्धों की सुंदरियां मोह से वायु पर्वत की चोटी उड़ा ले जा रहा है क्या ऐसा विचार कर अत्यंत आश्चर्य युक्त हो जाएंगी। तुम आर्द्र स्थल वेतसों से संपन्न इस आश्रम से आकाश मार्ग में बड़ी बड़ी सूनों के आक्रमण से बचते हुए अलकापुरी में जाने के लिए उत्तराभिमुख होकर आकाश में उड़ जाओ। टिप्पणी श्रृंगम कूटो स्त्री शिखरम श्रृंगम इत्यमरह हरति श्री धन लिट धनसित किंचित किम धनसित ये दोनों अव्यय संयुक्त होकर विकल्प और वितर्क आदि अर्थों को प्रकाशित करते हैं। उन्मुखी भी उन्नत मुखम यासाम ता उन्मुख्य विक्रम बहुव्रीहि यहाँ पर स्वांगा चोप सजनाद संयोग पदार्थ सूत्र से स्थित विवक्षा में इंगीश प्रत्यय हुआ है। मुग्ध सिद्धांगना भी सिद्धानाम अंगना विकर्ण में षष्ठी पुरुष मुग्धाश्च ता सिद्धांगना ताभि विकटम कर्मधारय सिद्ध देव योनि विशेष माने गए हैं अथवा योग की अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने वाले पुरुष सिद्ध सम्मत हैं। चकित चकितम चकित प्रकारम यथा था। यहाँ पर प्रकारे गुणवचन से इस सूत्र से प्रकार में द्वित्व होकर कर्मधारय वदुत्तरेषु इससे सु का लोप हो गया है। दृष्टोत्साह दृष्ट उत्साहो यस्ततः विकट में बहुव्रीहि दृष्ट धन इक्तः विकट में कर्माणि दृष्टः सरस निचुलात सरसा निचुला इस्मिन तत् तस्मात् विकट में बहुव्रीहि वानीरे कवि भेदे चान निचुलः स्थल वेद से इति शब्दार्णवः स्थानात् गति निवृत्ति अर्थ में विद्यमान स्था जगत में स्था धातु से लुट प्रत्यय होकर स्थान शब्द सिद्ध होता है। दिंग नागानाम दिशाम नागाह तेषाम व्यकरण में षष्ठी तत्पुरुष मतंगजो गजो नागह कुंजरो वारण करी इत्यमरह आठ दिशाओं में आठ दिग्गज रहते हैं जैसे कि ऐरावतः पुंडरीको वामनः कुमुदोंजनः पुष्पदंता सार्वभौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः स्थूल हस्तावलेपान स्थूलाश्च ते हस्ताः व्यकरण में कर्मधारय तेषाम अवलेपान व्यकरण में षष्ठी तत्पुरुष परिहरन परिधन हिरिय धन लिट विकट में क्षत्रिय प्रत्यय उदंग मुख उदंग मुखम यस्यतः विकट में बहुव्रीहि उत्पत उद्धनपत धन लोट। इस श्लोक में महामहोपाध्याय मल्लिनाथ जी ने एक दूसरे अर्थ का भी प्रदर्शन किया है। वह इस प्रकार से है सरस निचुलात कहने से कोई निचुल नामक रसिक महाकवि अभिप्रेत होते हैं जो कि महाकवि कालिदास के सहाध्यायी तथा दूसरे से दिखाए गए कालिदास के प्रबंध दोषों का परिहरण करने वाले थे। जिस स्थान में निचुल जैसे रसिक रहते थे उस स्थान से निर्दोष होने से ऊंचे मुख वाले होते हुए मार्ग में अर्थात सारस्वत मार्ग में दिंगनांग नामक कोई कालिदास के विरोधी आचार्य हैं। यहाँ पर दिंगनागा नाम यह आदरार्थी बहुवचन है। उनके हस्तावलेपों को अर्थात हस्त विन्यास पूर्वक दूषणों को परिहरण करते हुए अद्रे अर्थात अद्रिकल्प बेकर में पर्वत के समान उन्नत दिंग नाग आचार्य का श्रृंगम अर्थात प्रधानता को परिहरण करता है क्या। इस कारण से सिद्ध ही सारस्वत सिद्ध महाकवियों से और अंगनाभिश्च गुणवती सुंदरियों से भी दृष्टोत्साह उद्योग देखे जाते हुए खम उत्पत आकाश में उड़ो इस श्लोक में इस प्रकार के अपने प्रबंध और अपने प्रति कवि की यह उक्ति है कहकर मल्लिनाथ जी ने ध्वनि रूप इस अर्थांतर का भी प्रदर्शन किया है। संसर्गतो दोष गुणा भवन्ति ते तन्मृषा येन जलाशयेऽपि स्थित्वानुकूलम् निचुलश्चलन्तम् आत्मानमारक्षति सिन्धुवेगात्। इस श्लोक की रचना से कालिदास के सहाध्यायी पूर्वोक्त महाकवि को निचुल संज्ञा मिली है यह भी उन्हीं का कहना है परंतु मल्लिनाथ जी का यह अभिमत सर्वसम्मत नहीं है। दिंगनांग नाम के आचार्य कालिदास के विरोधी थे यह कहना भी निर्विवाद नहीं है क्योंकि दिंगनांग नाम के बहुत से विद्वान हो गए हैं। बौद्ध दिंगनांग कालिदास के समय के प्रतिद्वंदी विद्वान थे। इस कथन में भी प्रामाणिकता नहीं है क्योंकि आजकल बहुत से विद्वानों के मत में कालिदास विक्रम की प्रथम शताब्दी में थे। इसके विपरीत वसुबंधु के शिष्य दिंगनाग पांचवी शताब्दी में हुए थे। इस स्थिति में काल की विभिन्नता के कारण वे कैसे कालिदास के विरोधी हो सकते हैं इसके सिवाय अपने संप्रदाय के आचार्यों को छोड़कर भिन्न संप्रदाय के विरोधी विद्वान के लिए कालिदास का दिंगनागा नाम इस प्रकार से बहुवचनांत प्रयोग करना भी उपपत्तिपूर्ण नहीं माना जा सकता है। इन सब कारणों से मल्लिनाथ जी का पूर्वोक्त सिद्धांत किसी पुष्ट प्रमाण के ऊपर आधारित न होकर गड्डलिका प्रवाह न्याय विकर्ण भेड़िया दशान के अनुसार है। अब यहाँ पर दिंगनागा नाम ऐसा बहुवचन कवि ने क्यों लिखा यह प्रश्न उठ सकता है। इसका समाधान यह है कि मार्ग में उत्तर दिशा के अतिरिक्त अन्य दिग्गजों के स्थूल सूणों के आक्रमण से बचते हुए इस प्रकार अर्थ करने से कुछ भी आपत्ति नहीं आती है।